तब राजवीर के दिमाग में हल्का सा पुश हुआ और उसे जल्दी ही याद आ गया कि अरमान सिंघानिया कोई और नहीं बल्कि उसका चेला है, जिसे राजवीर बेहद पसंद करता है। अब राजवीर जल्दी से बाहर निकलकर अपने दरवाजे को बंद करते हुए बोला, क्या हुआ है अरमान को? कहाँ है अरमान? अरमान को किसने वायरस दिया? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे चेले को वायरस दिया? जैसे ही राजवीर ने इस तरह का लुक दिया और इस तरह की बातें की, अविनाश और अबीर दोनों ही हैरान हो गए थे। अब आगे, वहीं अबीर नासमझी से राजवीर की ओर देखकर बोला, क्या आप मिस्टर सिंघानिया को जानते हैं? और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो बचपन का दोस्त है। हालांकि डॉक्टर राजवीर जिंदल ने उनके साथ चलने के लिए हाँ कह दिया था, चाहे वजह कुछ भी हो। फिलहाल दोनों के मन में ये सवाल भी चल रहा था कि आखिरकार डॉक्टर राजवीर जिंदल अरमान सिंघानिया को कैसे जानता है और उसका उससे क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन फिलहाल अबीर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, डॉक्टर, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आपको ट्रीटमेंट करने के लिए बोला था तब आप साफ मना कर रहे थे, लेकिन अचानक से मिस्टर सिंघानिया का नाम सुनते ही आप उनके इलाज के लिए तुरंत कैसे हो गए? आपके बिहेवियर से लग रहा है मानो आप शायद मिस्टर सिंघानिया के काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, हालांकि आपकी उम्र में मुझे कुछ ज्यादा ही फर्क दिखाई दे रहा है। अब राजवीर अबीर की उटपटांग बातें सुनकर उसकी बातों से चिढ़ते हुए बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ अरमान कौन से अस्पताल में एडमिट है, मैं अभी और इसी वक्त वहां जाना चाहता हूँ। तब अविनाश बोला, जी जी, आप चलिए मेरे साथ, ऐसा बोलकर आगे बढ़ा। वेल, जल्दी ही राजवीर अपने घर को फटाक से लॉक करने लगा था। अब राजवीर को इस तरह से लॉक करते हुए देखकर अबीर हैरान हो गया और कन्फ्यूजन से बोला, डॉक्टर, आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से अपने घर को लॉक क्यों कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आप अपनी बीवी के साथ रहते हैं, अगर आपकी बीवी को कहीं घर से बाहर जाना हुआ तो वो कैसे जाएगी? अबीर, जिसे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था कि असल में राजवीर जिंदल अपनी मृत बीवी के साथ रहा करता था। जैसे ही अबीर राठौर के मुंह से राजवीर जिंदल ने अपनी बीवी के बारे में सुना, उसने अचानक अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि राजवीर जिंदल को ये भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी बीवी का नाम भी ले या उसके बारे में किसी भी तरह की कोई बात करे। तो अविनाश ने जल्दी ही अबीर के हाथ को कसकर पकड़कर बिंच लिया और आंखों ही आंखों में उसे इशारों में कुछ कहा था। तभी अबीर को लगा शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है, तुरंत ही बात बदलते हुए बोला, क्या मैडम कहीं बाहर गई हुई हैं? तब राजवीर ने खुद को थोड़ा शांत किया और बोला, वो घर पर नहीं है, वो अपनी किसी पार्टी में गई है और वैसे भी घर की एक दूसरी चाबी हमेशा उसके पास होती है। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, अविनाश और अबीर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया था और जल्दी ही वे लोग वहां से अस्पताल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आस्था अरमान के ठीक सामने बैठी हुई थी। अरमान कुछ भी बोल नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा लोहे के जैसा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। एक पल को अरमान की हालत देखकर आस्था खुद को संभाल नहीं पाई और फूटकर रो दी थी, लेकिन अपने आंसुओं को साफ करके आस्था ने अपने पेट पर हाथ फेरा और अचानक अरमान का हाथ उठाकर अपने पेट पर रखते हुए बोली, अरमान जी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। देखिए ना, हमारा बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। अरमान जी, आप उठने में देरी क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज उठिए, आपको उठना ही होगा। कहीं ना कहीं आस्था को आज अरमान से पहली मुलाकात याद आ गई थी, जब उसकी पहली मुलाकात अरमान सिंघानिया से हुई थी और पहली मुलाकात में ही अरमान ने उसके ऊपर गोली चला दी थी। एक एक करके जितनी भी उनकी खट्टी मीठी यादें थीं उसकी आंखों के सामने एक मूवी रील की तरह घूमने लगी थी और आस्था सारी यादों को संजोकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और अगले ही पल बोली, बस जल्द से जल्द आप उठ जाइए अरमान जी, हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी इस तरह से अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरमान आस्था के लिए कितना पोजेसिव था ये बात आस्था अच्छी तरह से जानती थी। वेल, आस्था कितनी देर तक अरमान के साथ इमोशनल कॉन्वर्सेशन करती रही। कोई और भी था जो उसकी कॉन्वर्सेशन चुपके से सुन रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वंशिका थी, जो ये चेक करने के लिए आई थी कि अरमान ठीक है या फिर कितना समय लगेगा उसे अभी मरने में। वेल, वंशिका को ड्रग्स दिए हुए 8 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वो तो लकीली जैसे ही अरमान को वायरस इंजेक्ट हुआ, ध्रुव ने उसे वायरस को पहचान लिया था कि ये कितना खतरनाक वायरस है, उसका एंटीडोट यहाँ नहीं है। इसीलिए फटाफट से उन्होंने अरमान का पर्सनल चॉपर उस गाँव में मंगवाया था और उस चॉपर के थ्रू वे सब जल्द से जल्द अरमान को अस्पताल में पहुंच चुके थे। लेकिन अब वंशिका मन में बोली, मुझे माफ करना आस्था, लेकिन मैं तुम्हें ये तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि तुम्हें इस खतरनाक इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अरमान कितना ज्यादा खतरनाक था ये बात वंशिका अच्छी तरह से जानती थी। जो बच्चे केवल 6 से 7 साल की उम्र में इतना भयानक तरह से खून कर सकता था वो कितना खतरनाक हो सकता था, वंशिका यही सब सोच रही थी। उसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया और वैसे भी कुछ दिन आस्था रोएगी, लेकिन उसके बाद अरमान को भूल जाएगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं खुद को सही साबित करते हुए वंशिका वहां से निकलने लगी थी, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में कुछ लोगों की शोरगुल की आवाज सुनाई देने लगी थी। जैसे ही वंशिका ने इस तरह की कुछ आवाजें सुनी जो कि काफी अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोग एक साथ बोल रहे थे, तो एकदम खिचड़ी सी पक गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा था, लेकिन तभी वंशिका ने देखा कि अस्पताल में पूरी तरह से हलचल मच चुकी थी और सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। वंशिका हैरान हो गई कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो भी सब लोगों के साथ बाहर जाकर ये देखना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा था। और जैसे ही वो बाहर गई, उसने देखा कि कम से कम हजारों लाखों की तादाद में धीरे धीरे लोग अस्पताल के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे थे। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ घबरा गया था कि अचानक से इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं जल्दी ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, साथ ही साथ टाइगर, मारिया, देव, वो सभी भी वहाँ इस वक्त मौजूद थे और सब इस भीड़भाड़ को हैरानी से देख रहे थे। और वंशिका ये देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी कि ये देखकर कि सब लोगों के हाथों में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था, अरमान सिंघानिया, हम आपके साथ हैं, अरमान को ठीक करो, अरमान सिंघानिया को कुछ नहीं होना चाहिए। अरमान के लिए इतने सारे लोगों को प्रोटेस्ट करता हुआ देखकर वंशिका की आंखें तो हैरानी के मारे चौड़ी हो गई थी। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, साथ ही राधिका, रौनक, एंजल, जो उन लोगों के साथ काफी ज्यादा अटैच हो चुकी थी, तो उनकी भी आंखों में उस वक्त आंसू थे। वहीं इतने सारे लोगों को देखकर एंजल खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा सा तेज आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए हैं। तभी आहान ने बोलना शुरू कर दिया था, एक्चुअली मैंने अभी ग्रुप चेक किया है, पूरे शहर भर में ये बात पूरी तरह से फैल चुकी है कि अरमान सिंघानिया इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पूरे जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इन सबके भाई ने बहुत ज्यादा मदद की है, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी के कोई मायने नहीं थे। इतना ही नहीं, भाई ने इन लोगों की हर तरह से मदद की है, किसी का घर बसाया है, किसी की बहन की शादी करवाई है या किसी के माता पिता का इलाज करवाया है, सभी की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा है।
इतना ही नहीं, कितने ही सारे हजारों गरीब अनाथ बच्चों के रक्षक हैं, भाई उनके लिए खाने पीने से लेकर उनकी शिक्षा तक का ध्यान रखते हैं, तो सभी लोग भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि ये बात कभी भी भाई ने बाहर नहीं आने दी और मीडिया को हमेशा इस तरह की पब्लिसिटी से खुद को दूर रखा था। मीडिया की नज़रों में भाई की छवि सिर्फ एक एरोगेंट बिजनेसमैन की थी। कभी भी अरमान भाई ने इस बात को किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने दिया था कि असल में अरमान सिंघानिया अपनी कमाई का 90% गरीब लोगों की सेवा में खर्च किया करता था। और आज जैसे इन सब गरीब लोगों को इस बात के बारे में पता चला, तो सभी के सभी भावुक हो उठे थे और अस्पताल की ओर जाम होने लगे थे। अब तो वंशिका ने जैसे ये सुना, अचानक से उसके पैरों में ऐसा लगने लगा था मानो कि बर्फ जम गई हो और वो खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई थी और तुरंत नीचे गिर गई थी और एक तरफ सदमे की हालत में बैठ गई थी। अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे और वो सोचने लगी थी, ये क्या हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा क्रिमिनल, इतने सारे लोगों का भगवान कैसे बन सकता है। क्योंकि जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, सभी के लिए अरमान सिंघानिया उनके भगवान से कम नहीं था। सब लोग अरमान सिंघानिया को पूजा करते थे। अब वंशिका को इस तरह से सदमे में एक तरफ बैठा हुआ देखकर ध्रुव की नजरें वंशिका पर पड़ती हैं और वो उसके पास आया और उससे बोला, तुम ठीक तो हो ना, मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ों को देखकर तुम्हें काफी ज्यादा बैड लग रहा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अरमान भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम भी अरमान भाई के लिए परेशान हो, आखिरकार अरमान भाई ने एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी इज्जत की रक्षा की थी और तुम्हें दुर्जन सिंह उसके आदमियों से बचाया था, तो तुम्हें तो भाई की चिंता होगी। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, वंशिका केवल आंसुओं भरी आंखों से ध्रुव की ओर देखती रही और उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे।